ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्वं विधत्स्वाखिलोकपालः वयं जदर्थस्तव पादमूलम् समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किं वान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथग् विभाता विधात् स्वसम्नो द्विजदेव मन्त्रम् श्रीशुक उवाच एवं विरिञ्च्यादिभिरीडितस्तात् विज्ञायतेषाम् हृदयम् तथैव जगादजीमोत गभीरया गिरा बद्धाञ्जलिं संवृत सर्वकारकान् एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्जे सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः श्रीभगवान् उवाच हन्त ब्रह्मन् अहो शम्भो हे देवा मम भाषितम् श्रुतावहिता सर्वे श्रेयो वः स्याद्यथा सुरः आज हम अभी डायरेक्ट चालू करते हैं आवृत्ति में ही हम सह वे त्वाम आप विधत्स्व कीजिए अखिल लोकपाला सब जीवों के पालक हम लोग वयम हम जदर्था
जिस कार्य के लिए
तव पाद मूलम आपके चरण कमल के मूल में समागतः आए हैं
ते
आपके वे
बही
बाहर
अंतरात्मा
हे अंतर्जामी किंवा
कौन सी ऐसी वस्तु है
जो
अन्य विज्ञाप्यम
आपके लिए अन्यों के द्वारा विज्ञापन करने योग्य है
अशेष साक्षिणः
आप तो सब कुछ के साक्षी हैं
सबके हृदय में रहते हैं
दैत्यों के द्वारा देवताओं को बहुत पीटा गया था, बहुत दुखी थे, तो श्री ब्रह्मा जी उनको लेकर क्षीर समुद्र के तट पर आए हैं और भगवान से उन्होंने विनय किया शिव जी के साथ, तो श्री भगवान प्रकट हुए हैं। तो प्रकट हुए भगवान की भी अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जदर्थः वयम् तव पाद मूलम समागतः, जदर्थः जिस अर्थ के लिए, जिस प्रयोजन को पूरा कराने के लिए हम लोग आपके शरण में आए हैं, तो त्वम विधत्स्व, आप इसको पूरा कीजिए। हम बहुत दुखी हैं, जैसा पहले देवताओं ने कहा, गजा दवारता इव गंग मंभः, जैसे वन में, पहाड़ में, दवानल में फंसे हुए हाथी हाथीगण गंगा जी की शीतल धारा पा जाए तो सुखी हो जाते हैं, इसी तरह से हे नाथ हम आपको पा गए हैं, हम सुखी हैं, पर फिर भी हम कुछ विशेष आशय से आपके चरण कमल की शरण में आए हैं। जदर्था है तो पाद मूलम वयम आगता, जिस उद्देश्य के लिए हम आपके चरण में आए हैं उसको त्वम विधत्स्व, आप पूरा कीजिए। तो श्री भगवान ने मानो कहा कि ठीक है, तो विज्ञापन कीजिए, बताइए क्या करना है, आपके हृदय में क्या है, कौन सा आपका कार्य हमें करना है। तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव और अन्य देवता मिलकर कहते हैं कि हे अंतरात्मन, हे अंतर्जामी, आप तो सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं और अशेष साक्षी हैं, सबके हृदय में बसते हैं तो सब कुछ जानते हैं, सबके साक्षी हैं, तो आपके लिए वही किम विज्ञाप्यम, और भी अन्य विज्ञाप्यम, तो फिर आपके लिए कोई क्या बाहर से बताएगा तब आप जानेंगे। हृदय में ही कोई संकल्प उठते हैं और आप हृदय के अंतर्जामी हैं, अंतरात्मा हैं, तो आपके लिए अन्य के द्वारा वही विज्ञाप्यम किम, आप तो जानते ही हैं क्या कहना है उसको। तो भगवान मानो ये कहते हैं कि आप लोग कहिए कहिए क्या करूं, मैं कैसे आपकी सेवा करूं, आपकी सहायता करूं, क्या करूं। तो लोग कहते हैं हे भगवान, आप तो अंतरात्मन हैं, अंतः की आत्मा है, अंतर्जामी परमेश्वर परमात्मा, आपको क्या विदित नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपको कुछ बताएगा। वही विज्ञापन, तब मानो भगवान ये कहते हैं तो ठीक है, तब आप लोग ही कुछ कीजिए, जो हमसे कराना चाहते हैं तो आप लोग स्वयं कुछ कीजिए। तब कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं अहम गिरित्रस चसुरादयो ये, मैं और हिमालय पर्वत में रहने वाले, कैलाश में रहने वाले ये भगवान शिव, मैं शिव जी और दक्षादय सुरादय, दक्षा जी प्रजापति और इंद्रादि देवता, ये एक विशाल अग्निपुंज के विस्फुलंग की तरह है, केतु की तरह है। केतु का अर्थ होता है चिंगारी, जैसे एक जगह विशाल अग्निपुंज हो और उसमें से कुछ चिंगारियां निकली हैं छोटे छोटे। तो हम लोग इस तरह से हैं, आप एक विशाल अग्नि की तरह हैं, तो हम लोग एक चिंगारी की तरह हैं। तो किंवा विदा में से पृथक विभाता, हम क्या जान सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोग आपसे पृथक विभाता, पृथक थोड़े देर के लिए चमक रहे हैं। कोई चिंगारी जब अग्नि ज्वाला से, पुंज से अलग होती है तो थोड़े देर तक उसका प्रकाश रहता है, धीरे धीरे ठंडा होते होते वो समाप्त हो जाता। तो हमारा तेज या हम में जो कुछ भी है केवल आपके संग से रहने से है। आपसे पृथक होने पर हम लोग अग्नि के विस्फुलिंग की तरह कुछ भी नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, हम क्या करें, हमको हमारी कोई बुद्धि काम नहीं कर रही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस समय हमारा बुद्धि चातुर्य रसातलम गतम, रसातल चला गया है, हमसे न कुछ सूझ रहा है कि क्या करें, न ये जानते हैं कि हित किस में होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कुछ हम लोगों को बताइए। विधत्व समनो द्विजदेव मंत्रम, ब्राह्मणों और देवताओं के हित के लिए क्या आवश्यक है, शांति का क्या उपाय है, हम लोग कैसे सुखी हों, आप ही बताइए। बल्कि आप ही कर दीजिए। देवता लोग ये भी कहते हैं लेकिन थोड़ा सा भगवान से संकोच कर रहे हैं कहने में। इन्हें बताइए, हम लोग को आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। वैसे करने की शक्ति तो हम लोग में नहीं है, अच्छा होता कि आप कर ही देते पूरा। लेकिन संकोच से पूछते हैं, उपाय बताइए कैसे हित होगा हमारा, कैसे हम सुखी होंगे, उपाय बताइए। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान इस तरह बोले, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं विरिंचा द्विरीडितस्तद विज्ञायतेषां हृदयं तथैव। इस प्रकार विरिंच आदि अर्थात ब्रह्मा जी जिन देवताओं में प्रधान हैं, उन ब्रह्म प्रधान देवताओं के द्वारा एवं ईडित, इस प्रकार से जब भगवान प्रशंसित हुए कि प्रार्थना की गई, तो विज्ञायतेषां हृदयं, उनके हृदय में जो था उसको जानकर भगवान ठीक वैसा ही बोले। देवताओं के हृदय में क्या था कि हमारे हित के लिए उपाय बताइए, हमें कैसे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, स्वर्ग तो चला ही गया है, वो बलि के हाथ में चला गया था, दैत्यों का शासन हो चुका था, देवता शासन भी खो दिए थे, ऊपर से उनके शरीर पर बहुत घाव भी थे, पिटाई भी हुई थी, दुर्दशा हो गई थी। तब इस दशा में इस विश्व के जो सबसे बड़े मैनेजर हैं भगवान ब्रह्मा जी, अब उनकी शरण में लोग गए हैं, तो ब्रह्मा जी अब देवताओं को दिखा करके भगवान से कह रहे हैं कि इनकी ये हालत है, क्या करेंगे, इसलिए आप ही कोई उपाय बताइए। तो ये उनका हृदय था। यहां हृदय का अर्थ है हृदय में छिपा हुआ डिजायर, इच्छा, भगवान कुछ उपाय बता रहे, और सरल उपाय होना चाहिए शांति का। तो तथैव, जैसी उनकी इच्छा थी उसके अनुसार ही भगवान उपाय बताए, बोले। भगवान की बोली कैसी है, जीमूत गभीरया, जीमूत बादल को कहे तो मेघ को, मेघ के समान गंभीर वाणी है भगवान की। भगवान को कभी भी ये लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बादल जब गरजता है तो ऐसा नहीं है कि कहीं माइक पर लाउड स्पीकर पर गरज रहा हो, कई किलोमीटर में आवाज जाती है और बहुत गंभीर सुखद। भगवान इस तरह से बोलते हैं। हमेशा भगवान की वाणी का ये विशेषण दिया गया है, भगवान मेघ की तरह बोलते हैं, मेघ की तरह व्यापक दूरी में आवाज जाती है और बहुत मधुर। जिमूत गभीर या गिरा जगा द, बोले। और देवता कैसे खड़े थे, ब्रह्मा जी शिव जी और सब देवता, बद्धांजलिम संवृत सर्व कारकां, उनकी सारी इंद्रियां बिल्कुल संयम में थी, अर्थात वे सब वाणी को रोक करके चुपचाप सुन रहे थे, बोल नहीं रहे थे, कान की वृत्ति सब समाहित थी, भगवान क्या बोलते हैं। भगवान की बात सुनने के लिए सारी इंद्रियां बिल्कुल समाहित थी। इस विश्व का ईश्वर बोलेगा और भी हित के लिए बोल रहा है। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कोई देश का बड़ा आदमी टेलीविजन पर या रेडियो पर कुछ संदेश देता है देशवासियों के लिए, तो उसे बड़े प्यार से ध्यान से सुना जाता है कि इस विशेष अवसर पर इन्होंने क्या कहा। यहां तो श्री भगवान बोल रहे हैं और ब्रह्मा आदि देवताओं के सामने, तो इसीलिए संवृत सर्व कारकान कारक इंद्रियों को कहते हैं, तो सारी इंद्रियां समाहित थी। वाणी चौपे, कान भी दूसरे तरफ वृत्ति नहीं रखा था, हाथ पैर बिल्कुल समाहित, अंजलि जोड़े हुए थे भगवान के सामने, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा शिवादि देवता खड़े, बद्धांजलिन समृत सर्वकार का, ऐसे देवताओं से श्री भगवान बोले। पहले संबोधन करते हैं, तो इसके पहले श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक एवे स्वरस तस्मिन सुरकार जय सुरेश्वर। श्री विष्णु सुरेश्वर हैं, सुराणाम ईश्वर, समस्त देवताओं के वे कंट्रोलर हैं, स्वामी हैं, मनुष्य आदि जीवों की तो बात ही क्या है, सुरेश्वर। वैसे इंद्र भगवान है सुरेश या सुरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, परंतु वह केवल औपचारिक ईश्वरता ही है इंद्र की, वास्तविक ईश्वर भगवान विष्णु हैं, तो उनको सुरेश्वर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, समस्त सुरों के देवताओं के ईश्वर। प्रकट लीला में आप सुन ही रहे हैं कि भगवान किस तरह से ईश्वर हैं देवताओं के, तो ऐसे सुरेश्वर भगवान एक एव तस्मिन सुर कार्ये ईश्वर। देवताओं का जो काम करना है जिससे उनका हित होगा, उस देव कार्य में अकेले ही ईश्वर हैं अर्थात समर्थ हैं, भगवान अकेले ही समर्थ हैं सब कुछ करने के लिए। किस कार्य में समर्थ हैं, जो कार्य कहेंगे करने के लिए, अर्थात मंदराचल पर्वत वो अकेले ला सकते थे, समुद्र को मथ करके वो अकेले अमृत पैदा कर सकते हैं, सब कुछ। और वास्तव में भगवान ने अकेले किया है, ये तो नाम भर है देवताओं का और दानवों का, लोग कुछ नहीं किए। आप आगे सुनेंगे किस तरह भगवान सारा कार्य किए। तो एक एव ईश्वर तस्मिन सुर कार्य, उस सुर कार्य में एक अकेले ही समर्थ हैं, फिर भी बिहर्त काम ताना, भगवान बिहार करने की इच्छा से उनसे इस तरह बोले। दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर के भगवान कुछ बिहार करना चाहते थे, भगवान कभी भार नहीं ढोए हैं, तो कुछ वजन उठाने की इच्छा हो रही थी, मंथन दंड पकड़कर मथने की इच्छा हो रही थी, कई कई इच्छाएं हो रही थी। भगवान की इच्छाएं भी भगवान जैसा होता है होती हैं, तो बिहार तो काम हो मतलब बिहार करने की इच्छा से। एक बार तो एक भक्त कह दिए कि भगवान बोर होते हैं कभी कभी, लीला करने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, भगवान तो आनंद घन है, पर फिर भी एक विशेष विहार करने की इच्छा से उन्होंने देवताओं से इस प्रकार कहा। क्या विहार करना चाहते थे? समुद्र मथना दे। भगवान की इच्छा हुई कि मैं अपने ही जीव दैत्य या देवताओं के साथ मिल करके समुद्र मंथन करूं। अरे कोई घड़े में मटके में 5 किलो 10 किलो दही मथे, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन समुद्र ही मथने की सोचा जाए तो ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। कितना बड़ा मंथन दंड आएगा और कहां कहां खड़ा होकर के उसको चलाया जाएगा, पूरे समुद्र का पानी आंदोलित करना है, वो भी क्षीर समुद्र का जो इस समुद्र से कई गुना बड़ा है, उसको मथना है। तो भगवान इस मंथन क्रिया के द्वारा विहार करने चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, विहार का अर्थ होता है आनंद लेना। तो इस प्रकार देवताओं से कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने संबोधन किया, हंत ब्राह्मण अहो संभो, ये संबोधन है भगवान का। ब्रह्मा जी भगवान ने कहा, भगवान बहुत सुशील व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हम तो आदर शब्द में है, हे ब्रह्मा जी, अहो शंभो और हे शंभु जी, हे शिव जी। भगवान शिव का एक नाम शंभु है, तो भगवान उस नाम से संबोधित करते हैं। शंभु, शंभु का अर्थ होता है जो कल्याण या शांति की भूमि हो। शंभु, भू माने भूमि और सम माने शांति, सुख। भगवान शिव सुख और शांति के भूमि, इनसे कल्याण होता है सबका। यही एक ऐसे देवता है जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। झगड़ा क्या होगा, रहते हैं पेड़ के नीचे तो खेत आदि के लिए झगड़ा हो ही नहीं सकता है। आज तक अपने लिए कोई फ्लैट नहीं बांध, कोई सवारी हाथी घोड़ा नहीं रखे, बूढ़ा बैल रखते हैं। झगड़ा क्या होगा, झगड़ा तो उससे होता है जो दखल करना चाहता है, हमारा ये हो जाए वो हो जाए वो। और वो हैं जगत के ईश्वर, भगवान हैं, लेकिन कोई भी संग्रह नहीं रखते। पेड़ के नीचे रह लेना, वो भी गृहस्थ लाइफ पार्वती जी के साथ, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। इंद्र का झगड़ा दैत्यों से हमेशा होता रहता है, भगवान विष्णु का झगड़ा होता रहता है दैत्यों से, मारते हैं पीटते हैं, लेकिन शिव जी कोई झगड़ा ही नहीं, कोई संग्रह करना ही नहीं, झगड़ा क्या होगा। बल्कि ये स्वयं तो भिखारी जैसे रहते हैं, पर दूसरों को लुटाया करते हैं, धन देना, सोने की लंका दे देना और दे देना, बहुत उदार दाता है, इसलिए उनको आशुतोष कहते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो शंभु का ये अर्थ है, शांति और सुख के आधार। तो भगवान यह संबोधन करते हैं, हे ब्रह्मा जी और हे शंभु, हरे कृष्ण जय राधे, हे देवा। इसके बाद समूहवाचक संबोधन कर रहे हैं, हे देवताओं, मम भाषितम श्रृणुता। वैसे वो सुन ही रहे हैं, एकाग्र चित्त से सारे देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब भगवान विष्णु की बात सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से भगवान कह रहे हैं कि मम भाषितम श्रृणुता, मेरे भाषण को, मेरी बात को सुनिए। तो और सावधानी से सुनने लगे होंगे। लगता है कि कोई कोई देवता भगवान के कृपा का, भगवान के सौंदर्य का आपस में वर्णन कर रहे थे, तब भगवान ने कहा कि इस समय बोलिए मत, सुनिए, मेरे विषय में भी मत बोलिए, आप लोग शांति से सुनिए। इसलिए कह रहे हैं कि मम भाषितम श्रृणुता, मेरी बात को सुनिए, सर्वे, सब लोग, सब लोग मेरी बात को सुनिए। श्रेयो वह सैद यथा सुरा, हे देवताओं, जिस बात से आप लोगों का श्रेय होगा, कल्याण होगा, वो बात मैं बताने जा रहा हूं, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। तो भगवान देवा भी कहे और सुराह भी कहे, तो इसमें एक का अर्थ है गंधर्व आदि, और सुरा का अर्थ है देव, देव का या सुरा में से किसी का भी अर्थ होगा इंद्रादि देवता, और गंधर्व आदि सबको भगवान सावधान कर रहे हैं। आप सुनिए, जिस बात से आप लोगों का हित होने वाला है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। देवताओं ने यही प्रार्थना भी किया था, या बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा, तो भगवान सावधान करा करके और बोल रहे हैं। श्री भगवान अद्भुत बात कहते हैं, जिन दैत्यों के द्वारा इतनी पीड़ा हुई थी देवताओं को, और जो हमेशा शत्रु का काम करते हैं, उन्हीं दैत्यों से, दानवों से मित्रता करने के लिए भगवान कह रहे हैं। यह भी भगवान की एक अद्भुत लीला है। जात दानव दैत्ये यैस्तावत् संधिर् विधीयताम्, काले नानुगृहीतैस्तैर् यावद् वो भवयात्मनः। भगवान ने कहा, जात, आप लोग जाइए, कहां जाइए, भगवान शांति का उपाय बता रहे हैं। पहले कह रहे हैं जात जाइए और दानवों से और दैत्यों से, मतलब दनु की संतान और दिति की संतान, दानवों से और दैत्यों से संधि कीजिए, संधि विधीयता, कॉम्प्रोमाइज कीजिए। भगवान ने कहा यह बहुत कठिन काम था देवताओं के लिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जाकर संधि कीजिए। संधि कीजिए ऐसा ही केवल नहीं कहे, अभी जाइए और संधि कीजिए। जातक का अर्थ ये है कि आप अभी जाइए और दैत्यों से मिलकर के, दानों से मिलकर के संधि कीजिए, संधिर विधीयता। तो किसी किसी देवता ने कहा कि संधि करें कब तक, उन लोगों से संधि बहुत काल तक चल नहीं पाएगी, कब तक करें। तो भगवान ने कहा तावत, तब तक संधि कीजिए जब तक काल आपके अनुकूल नहीं आ रहा है। एक समय आएगा जबकि आत्मन स्वतः आप लोगों की समृद्धि होने लगेगी, आप बढ़ने लगेंगे। इस समय दैत्यों के अनुकूल है काल, कालेन अनुगृहीत। दैत्यों और दानवों को काल ने अपना बना रखा है, समय इस समय उनके अनुकूल चल रहा है। तो समय जिसके अनुकूल चल रहा हो उससे झगड़ा करना ठीक नहीं है। आप लोग जाइए, मैं आज्ञा देता हूं, उनसे संधि कीजिए। संधि विधेयक एकदम अपोजिट पार्टी से संधि करना है, जिससे वंश परंपरागत झगड़ा है और उनमें संधि करने की बात भगवान कह रहे हैं। यहां इस संसार में देखा जाता है ये पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं, सिद्धांत में कभी कभी एकदम एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन कभी कभी संधि कर लेते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं, है देखा जाता है। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि कैसे काम होगा। तो कहते आप लोग जाइए इस समय और दानवों से दैत्यों से संधि कीजिए, जब तक आपके अनुकूल समय नहीं आ जाता है तब तक उनके अनुकूल बनकर रहिए, दैत्यों के, उसे मिल करके काम कीजिए। तो किसी ने कहा प्रभु वे तो हमारे दुश्मन हैं, आप उनसे संधि करने के लिए कैसे कह रहे हैं। कुछ देवताओं का चित्त एकदम खिन्न हो गया कि कैसी बात भगवान कह रहे हैं, हम पूछे के हित का उपाय बताइए तो ये कहते हैं जाकर अपने दुश्मन से संधि करो। तब भगवान कहते हैं घबराइए मत, सुनिए सुनिए नीति है। भगवान कहते हैं अरयोपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे। जब कोई बड़ा काम साधित करना हो और शत्रु को मिलाने से ही वो काम हो सकता है तो शत्रु से भी मित्रता करनी चाहिए, ये नीति है। एक ऐसा काम है जो आप लोगों से अकेले नहीं हो सकता है, सहकारी समिति चाहिए। और भगवान ये भी नीति बताते हैं कि जहां पर मान लीजिए कोई सहकारिता करना चाहता है लेकिन वो बलवान है ज्यादा धनी है, उसके साथ मिलकर काम करना है तो उस बलवान के सामने कुछ झुक करके चलना होगा, भगवान ये बता रहे हैं। वे लोग संधि करने नहीं आ रहे हैं, या ऐसा नहीं भगवान ने कहा कि फोन करिए यहां से और उनको बुलाइए और संधि कीजिए, नहीं नहीं, वहां जाकर के संधि करना है, जाकर झुकना है। ये हमेशा नियम है, कोई बलवान व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज करना हो तो उसके अनुकूल ही होना पड़ता है, वो शर्त रखेगा ये होना चाहिए ये होना चाहिए ये होना चाहिए, तो बात मान लेनी चाहिए। भगवान नीति बता रहे हैं अरयोपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरव। बड़ा काम हो और शत्रु से मिले बिना न हो रहा हो तो चाहिए कि शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। अहि मूषकवत् देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतै, और पदवीं गतै अर्थस्य पदवीं गतै, जब अपना अर्थ की प्राप्ति सिद्धि हो जाए जिस काम के लिए संधि किए हैं वो अपना काम हो जाए तो सर्प और चूहे की तरह व्यवहार कर सकते हैं। मतलब बद्ध और घातक का भाव अपना सकते हैं। जब काम बन जाए अपना तो उसके बाद दैत्यों को मारना, उनका वध कर देना, लेकिन तब तक तो उनके अनुसार ही चलना है, झुक करके चलना है। सर्प हमेशा चूहे को खा जाता है, तो चूहा बद्ध है और सर्प घातक। अथवा इसका एक भाव यह है कि भगवान ये कहते हैं कि जैसे मयूर के भय से सर्प त्रस्त हो जाता है कि मयूर हमको खा जाएगा, तो वो तुरंत घुस जाता है चूहे के बिल में और जाकर के थोड़े काल के लिए मित्रता स्थापित करता है, क्योंकि भय बस है वहां, और इसके बाद चूहे को भी खा करके निकलकर चल देता है। ये भगवान नीति बता रहे, संसार में जीने के लिए करना पड़ेगा। तो अथवा एक बार की बात है, सर्प पकड़ने वाले एक पिटारी में एक सर्प को पकड़ लिए और उसमें संजोग बस एक चूहा भी आ गया था, तो सर्प पिटारी में बंद हो गया और चूहा भी, तो दोनों बंद थे, पर चूहा के पास भगवान ने एक शक्ति दी है छेद करने की, वो पिटारी में छेद कर सकता था। तो सर्प पहले मित्रता किया, संधि किया चूहे से, पहले कहा कि हे चूहा भाई, तो हम दोनों सेम विपत्ति में फंस गए हैं, आप भी इधर कैद हैं और हम भी कैद हो गए, आप ये काम कीजिए कि आप छेद कीजिए इस काठ के बर्तन में, आप छेद कीजिए और हम भी निकल जाएंगे, आप भी निकल जाएंगे। उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम छेद कर देंगे। तो छेद कर रहा था ऊपर, तो चूहा के पकड़ में नहीं आ रहा था मुख उसका, तो सर्प ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हमारे मस्तक पर चढ़ जाइए, मैं फण फैलाता हूं और मेरे मस्तक पर चढ़ करके कुतर दीजिए ऊपर। तो कहा ठीक है ठीक। तो मूर्ख चूहा ये समझ रहा था कि सर्प आज हम हमारे अधीन हो गया है और अपने मस्तक पर हमको उठाया है। जब छेद हो गया तो सर्प पूछता है, पूरा हो गया ना, इसके मध्य से हम लोग निकल सकते हैं ना, जरा नापने दीजिए हमको। तो कब ठीक नाप लीजिए, तो सर्प पूरा निकल गया, मतलब निकलने भर हो गया था, और निकल करके कहा कि हे मूषिक भाई, अब आप निकल लिए, छेद कर चुके। और ऊपर जब मूस निकला तो उसको गप से पकड़ लिया, सांप खा करके चल दिए। तो ये है मित्रता, और भगवान यही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि ये दैत्य बड़े बदमाश हैं, बहुत खल हैं, उनके साथ इस तरह के व्यवहार को बताना ये भगवान के लिए बिल्कुल ठीक। तो आप लोग संधि कीजिए, एक बहुत बड़ा काम करना है। तो कुछ देवताओं ने पूछा कौन सा काम करना है, उनसे मिल करके कौन सा काम करना है। तो भगवान कहते हैं, अमृतोत्पादने जत्नः क्रियतम अविलंबितम, आप लोगों को अविलंबितम बिना देर के समुद्र मंथन करना है, अमृत उत्पन्न करना है। जस पीतस्य वै जंतुर मृत्यु ग्रस्तो अमरो भवेत, जिस अमृत को पी लेने पर जन्म मृत्यु में फंसा हुआ जीव भी अमर हो जाता है। तो अमृत निकालना है, अमृत मतलब अमृत उत्पादने जत्न क्रियताम, अमृत प्रोड्यूस करने के विषय में प्रयास करना है, काम करना है, वो भी अविलंबितम, और देर मत कीजिए। अब आप लोग अभी जाइए, संधि कीजिए और काम चालू कीजिए। बहुत बहुत फार्म भरने की जरूरत नहीं थी, और यह काम हुआ काम। आजकल कोई छोटा सा काम करे आदमी तो पहले सरकार से इतना दरखास्त देकर के लिखवाओ, ये अप्रूव करो, एक घर बनाने चलिए तो नक्शा पास कराओ, ये करो ये करो। भगवान कहते अविलंबितम, से विलंब नहीं करना है, अब तत्काल आप वो काम कीजिए, अमृत उत्पादन करना है। अमृत का अर्थ है ये नहीं मरना है, जो अमर कर देता है। तो भगवान कहते हैं जस पीतस वही जंतो हो मृत्यु ग्रस्तो अमृतो भवे। मृत्यु से ग्रस्त है व्यक्ति लेकिन अमृत पी ले तो कुछ काल के लिए बिल्कुल नहीं मरेगा, शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अमृत उत्पन्न करने के फेर में पड़िए और शीघ्र कीजिए। और क्या क्या करना होगा, देवताओं ने भगवान से पूछा कि और क्या क्या करना होगा। तब भगवान कहते छित्वा क्षीरो दधौ सर्वा बीरु तृण लक्ष औषधि। और देवताओं ने भी पूछा कि कहां उत्पन्न करेंगे अमृत को, कैसे उत्पन्न करेंगे। तो भगवान ने कहा सुनिए, क्षीरो दधि में, क्षीर समुद्र में बहुत गुणवती औषधियां, लताएं, गुल में और तृण चार का नाम है, कुछ लताएं उसमें डालिए और गुल में तृण घास डालिए क्षीर समुद्र में और फिर मथिए। कैसे मथेंगे, तो भगवान कहते हैं मंथानम मंदरम कृत्वा मंदर पर्वत जो 10,000 योजन ऊंचा है, 40,000 कोस, 80,000 माइल तो ऊंचा है और उसी हिसाब से चौड़ा है, फैला हुआ है। भगवान ने कहा कि मंदराचल को मंथन दंड बनाइए, मथानी बनाइए और नेत्रम कृत्वा तो वासुकी, और उस पर्वत में लपेटने के लिए वासुकी जी को रस्सी बना करके मथिए। बहुत सरल उपाय भगवान बता रहे हैं। तो वासुकी को रस्सी बनाना है और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना, तो बना करके और मथिए। और क्षीर समुद्र में अच्छा दूध में गुल में तृण लता औषधि डालना है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि दूध में कुछ खास प्रकार की औषधि लता घास डालने पर अगर मथा जाए तो जो परिणाम निकलेगा वो अमृत जैसा फायदा करता है। पता नहीं कौन कौन उसमें जड़ी बूटी डाली जाएगी और मथा जाएगा तो दूध से अमृत निकलेगा। तो दूध के समुद्र में भगवान ने ये कहा डालने के, वीरु तृण गुल्म लता औषधि पांच, इसको डाल करके और मथिए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाइए और वासुकी नाग जो सबसे बड़े सर्प हैं, बहुत मोटे हैं और बहुत लंबा है, पर्वत में कई बार उनको लपेटा जा सकता है, अन्यथा इतनी बड़ी रस्सी कहां से आएगी और दूसरी रस्सी टिक कैसे सकेगी, एक बार खींचने में इधर से टूटकर खत्म हो जाएगी। वासुकी तो बहुत मजबूत रस्सी है। किसी किसी देवता ने कहा कि तो प्रभु वो कैसे स्वीकार करेंगे रस्सी बनने के लिए, इस पर्वत में उनकी जान चली जाएगी। तो भगवान ने कहा कि उनको कुछ अमृत देने का वादा कर दो तो वो तैयार हो जाएंगे। उनको भी दे देना है। और यही हुआ भी था वास्तव में। तो भगवान ये कहे और इसके बाद किसी ने कहा कि हम लोग उन लोगों के साथ अगर मथेंगे तो दानव पहले से ही मजबूत हैं, स्वर्ग पर भी उन्हीं का शासन है, सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, तो अपने ही हम लोगों को मार करके पी जाएंगे, हम लोगों को मिलेगा नहीं, हम लोगों को विश्वास नहीं है कि हमें अमृत मिलेगा, दैत्य सब ले लेंगे। तो भगवान कहते हैं सहाय ने मया देवा निर्मथध्वम अतंद्रित, मैं रहूंगा आपकी सहायता करने के लिए, आपके साथ ही रहूंगा, आप लोग आलस छोड़ करके समुद्र मंथन कीजिए, मैं साथ में रहूंगा, आपका हेल्प करूंगा। वास्तविक तो ये बात है कि भगवान ये करें कि आपका हेल्प थोड़ा सा लूंगा, बाकी करूंगा मैं ही सब कुछ। पर भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि सहायन मया, मैं सहायक रहूंगा आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। तो किसी ने कहा कि लेकिन दैत्य तो पहले से ही बलवान है, वो हम लोगों को मार करके काम करा करके और फिर छीन करके पी जाएंगे, मारेंगे भी जैसे पहले मारे हैं, अभी भी तो मार खा करके आए। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्याय जूजम फलग्रह। भगवान ने आश्वासन दिया कि दैत्यों को केवल क्लेश हाथ लगेगा, केवल दुख, मथने में जो परिश्रम है केवल वही लगेगा, उन लोगों को एक बूंद भी अमृत नहीं मिलेगा, मैं हूं ना वहां पर, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये जब भगवान ने आश्वासन दिया तब देवताओं को बड़ा भरोसा हुआ, तब तो ठीक, जब आप रहेंगे तब आशा है, विश्वास है। तो भगवान ने कहा कि दैत्यों से काम कराना है, अमृत आप लोगों को मिलेगा। ये बहुत विचित्र लीला है, अमृत उत्पन्न हुआ तो दैत्य लेकर के भाग चले, देवता रोने लगे कि हम तो आपके कहने से ये पर्वत उठा कर लाए या मंथन कर रहे हैं और अमृत तो ले गए। तो भगवान ने कहा अपने भक्तों से चिंता मत करो, मैं अभी बहुत सरल उपाय से ला देता हूं। तो श्री भगवान एक परम सुंदर स्त्री का रूप धारण किए और जिधर लेकर के वो भाग रहे थे, हम पहले पियेंगे, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं, तुम तो केवल खड़ा था, तुम मथने में परिश्रम नहीं कर रहा था, मुझे पहले पी लेने दो। तो आपस में उनमें झगड़ा हो गया, मैं पहले पीऊंगा। तब तक तुम्हें मोहिनी को देखे तो किसी ने कहा कि अरे मूर्ख, कहीं कि इस पानी में क्या रखा, ये असली अमृत देखो सामने आ रहा है। तो वे तो भूल गए भगवान को देख करके स्त्री के रूप में, और कैसे कैसे भगवान ने ट्रिक करके उनका अमृत ले लिया कलश, वो लोग अपने आप दे दिए मोहिनी को, भगवान के हाथ से छीनकर भागे थे और एक स्त्री के हाथ में दे दिए। स्त्री ने कहा कि आज हमारा विवाह नहीं हुआ है और मैं आज तक रसोई नहीं बनाई हूं, परसी नहीं हूं, तो हमको बुद्धि नहीं है, किसी के लोटे में भर लोटा मिल जाएगा, किसी को एक बूंद भी नहीं मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो हमको गाली देगा मारेगा, इसलिए मैं नहीं बांटूंगी, आप लोग अपना घड़ा ले लीजिए, आप लोग बांट लीजिए। वो लोग कहते अरे बाप रे बाप, कितनी शुद्ध ज्ञानवती स्त्री है, गलती हो जाएगा, किसी ने कहा अमृत को छीन करके असुर के हाथ से उसके हाथ में दे करके दे ही दिया था, बाकी नहीं, तुम गलती कर ही नहीं सकती हो, गलती कर ही नहीं सकती हो, और अगर गलती हो जाए तो बोलो, सब लोग स्वीकार करते हो ना, जैसे बांटेगी स्वीकार है ना, सबने कहा हाँ हाँ जो भी करे उचित होगा, हम स्वीकार करते हैं। और मोहिनी को तो करना था, इन दुष्टों को देना नहीं था अमृत, अपने भक्तों को देवताओं को देना था, बैठा करके पंक्ति में ये कहीं जगह, और भगवान ने उन लोगों को अमृत नहीं दिया, ऐसे लाइन बनाए, एक तरफ दैत्य लोग बैठे थे, भगवान ने ऐसे संकेत किया जो अपने आदमी हैं थोड़ा किनारे बैठाइए, ऐसे धूर्तता करनी थी भगवान को। तो लोग बैठे थे कि अब अमृत मिलेगा मिलेगा, और मोहिनी अमृत का कलश लेकर के दैत्यों के लाइन में घूम रही थी, उनके तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और कहती थी आप धीरज रखिए, थोड़ा ऊपर ऊपर का छिछला है ना, जो ज्यादा पानी मिला हुआ वो उन लोगों को दे दूं, वो लोग बैठे हैं देवता, वो भी पीना चाहते हैं। श्री भगवान मोहिनी अवतार में दैत्यों को मोहित कर रहे थे, केवल अमृत देना नहीं था, उन लोगों के समाज में घूम रहे थे, तो वो लोग भगवान के नूपुर की ध्वनि सुन रहे थे और आंचल लग जाता था उनके मुख पर, तो सोचते थे चाहे जो भी हो, अमृत भले मिले या न मिले, लेकिन विवाह तो हमारे साथ ही करेगी है, सबके मन में यही विश्वास था, इसलिए बहुत संतुष्ट थे, तो अमृत भी देगी और विवाह भी हमसे ही करेगी, ये भागवत में लिखा हुआ है सब। लेकिन भगवान अमृत भी नहीं दिए और इसके बाद गायब हो गए। तो यहां पर श्री भगवान बोल रहे हैं पहले से, क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या, दैत्या क्लेश भाजो भविष्यन्ति, केवल कष्ट मिलेगा दैत्यों को, समुद्र मंथन करने में केवल परिश्रम, और जूयम फलक ग्रह, और आप लोग फल प्राप्त करेंगे। लेकिन भगवान ने संधि करने के लिए इन लोगों को बुद्धि बता रहे हैं। कितने प्यार से भगवान अपने भक्तों को बता रहे हैं, कहते हैं यूयम तद अनुमोदध्वम जद छम तसुरा सुरा। हे देवताओं, असुरा जद इच्छन्ति तद अनुमोदध्वम, असुर जो भी चाहें संधि करने में, या जैसे भी जो भी चाहें तुम लोग उसका अनुमोदन करो। कहो ठीक है ठीक है ठीक, हम ये लेंगे हम ये लेंगे। समुद्र से कई चीजें उत्पन्न होगी, तो कहेंगे हम ये लेंगे हम ये लेंगे, तुम लोग अनुमोदन करना ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, संधि भी जब होगी, जब दोनों पार्टी मिलेगी, तो चूंकि वो बलवान पार्टी है तो अगर झुकाएगी नहीं ये होगा ऐसा होगा ये होगा, तो ठीक है अनुमोदन करना। क्योंकि नियम है कि किसी बलवान के साथ जब कोई संधि करता है तो बलवान की बात को रखना पड़ता है, उसकी इच्छा के अनुकूल चलना पड़ता है, तब संधि होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये भगवान अपने भक्तों को, देवताओं को बुद्धि दे रहे हैं। जूयम तद अनुमोदध्वम जद इच्छन्ति असुरा सुरा। हे देवताओं, जद असुरा इच्छन्ति तद अनुमोदध्वम, उसका अनुमोदन करो। न सरम भेण अनुच्छिध्यन्ति सर्वेर्था सांत्वयजत। और किसी भी बात में जल्दीबाजी मत करना कि हमको ये मिले हमको ये मिले। शांति से जितने अर्थ साधित होते हैं, शांति से जैसा काम बनता है उतने घबराने से नहीं बनता है। तुम लोग घबराना मत। सामान्य नीति भगवान सिखा रहे हैं कि जितना शांति से अपना अर्थ प्राप्त होता है, पूरा होता है, उतना झगड़ा करने से घबराने से नहीं होता। धैर्य रखना, क्योंकि बिल्कुल विपरीत समाज से संधि होने जा रही है। और दैत्य का मतलब ही है किसी भी विषय में मैं भोगूंगा, मेरा, ऐसे लोगों के साथ संधि करने जा रहे हो, तो वो जो भी इच्छा करे, जो भी कहे, वो सब स्वीकार कर लेना। और भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं वहां रहूंगा ना, ये मत सोचना कि अब तब तो सब कुछ ले ही जाएंगे वे। भगवान ने पहले ही कह दिया वे अमृत नहीं ले पाएंगे, लेकिन अपने भक्तों को प्यार से सिखा रहे हैं कि तुम लोग घबराना मत, झगड़ा मत करना। और अंत में ये सिखा रहे हैं कि न भेतव्यम कालकूटा विषा जलधि संभवात। समुद्र से कालकूट विष उत्पन्न होगा, तुम लोग डरना मत कि मर जाओगे। न भेतव्यम, भय मत करना। भगवान के कहने का आशय था कि उसको शिव जी पी जाएंगे, इसलिए भय मत करना। समुद्र में से विष जब उत्पन्न हुआ तो सब लोग मथुरा छोड़ करके भाग चले, उस समय भगवान की बात भी याद नहीं रही। हाय 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 करके छोड़ दे काम धंधे, कौन मथन करने जाए। सबसे पहले विष निकला था समुद्र से, वो घबरा गए थे, लेकिन भगवान ने कहा कि डरना मत, मरोगे नहीं, उस विष को शिव जी पी जाएंगे। न भेतव्यम कालकूटा विषात जलधि संभवत, कालकूट विष जहर, तो डरना मत। और भगवान तीन चीज जोर देकर के कह रहे हैं संधि करने में। लोभ कार्जन व जातु, रोष कामस्तु वस्तुषु। और वस्तुषु समुद्र मंथन करने पर जो जो चीजें उत्पन्न होंगी, जो जो वस्तुएं उत्पन्न होंगी, जैसे ऐरावत हाथी उत्पन्न होगा, उच्चैसरवा घोड़ा, चंद्रमा और अनेक प्रकार की चीजें, वारुणी और लक्ष्मी जी, अमृत, क्या क्या, भूल करके भी लोभ मत करना। पहले भगवान लोभ को बता रहे हैं। लोभ कार्जो नवो जातु, वह मैंने जिसमा भी, तुम लोगों के द्वारा चाहिए कि जातु कदाचित अभी किसी भी स्थिति में लोभ मत करना। लोभ का अर्थ है कि जितनी चीज मिल जाए या न मिले चुपचाप रहना। यदि मान लीजिए किसी को कोई चीज मिल गई तो उसमें संतोष नहीं होता है, वो और की लालसा करता है, तो इसको लोभ कहा गया है। और की अभिलाषा हो जाए, और की अभिलाषा हो जाए, तो कुछ चीज मिले तो और की इच्छा मत, और का लोभ मत करना। जातु, जातु का अर्थ है किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में लोभ मत करना। और रोसहना, और कोई चीज अगर न मिले उसको दैत्य ले ले, दैत्य छीन करके ले ले, चाहे जैसे ले ले, तो फिर क्रोध मत करना है। रोसहना, किसी भी स्थिति में क्रोध मत करना है। और सबसे सरल पाए तो बता रहे हैं कि कामस्तु वस्तु, इच्छा ही मत करना कि हमको ये मिले। किसी भी वस्तु की जो समुद्र से उत्पन्न हो तो कामना मत करना, हमको ये वस्तु मिले, हमको ये मिले, मैं भोगना चाहता हूं, इस तरह की इच्छा मत करना। और ए हरि बोल, क्या कर रहे हो, क्यों बुला देते हैं ऐसे लोगों को? कथा में इस तरह का ड्रामा जादू नहीं होता है, इस तरह का काम नहीं कराना चाहिए। भगवान की वार्ता चल रही है, इधर ये फोटो, ये फोटो, इसे क्या जरूरत है? भगवान बात कर रहे हैं अपने भक्तों से, बातें सिखा रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत महत्व की बात है। ये केवल देवताओं के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए भी है। कदाचित किसी भी स्थिति में लोभ मत करना, समुद्र से उत्पन्न वस्तु में। और रत्न और स्त्रियां भी उत्पन्न होंगी, उनको कभी भोगने की इच्छा मत करना। काम नहीं होना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। भगवान ने गीता में कहा ये तीनों नरक के द्वार हैं, नरक के खुले द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। और भगवान अपने भक्तों को सिखा रहे हैं, जो समुद्र से बहुत सी चीजें उत्पन्न होंगी तो लोभ मत करना, जो मिले उसमें संतोष कर लेना। अगर विपरीत पार्टी के लोग उसको ले लें तो क्रोध मत करना। और बहुत मूल्यवान वस्तुएं उत्पन्न होंगी, जैसे कौस्तुभ मणि या स्त्रियां, अप्सराएं या लक्ष्मी जी, कभी भी काम नहीं आना चाहिए तुम्हारे हृदय में। भगवान कितना स्नेह से अपने भक्तों को सिखा रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ से बचना। काम करना, मैं रहूंगा वहां पर, लेकिन लोभ, क्रोध और काम मत कर। काम वासना नहीं आनी चाहिए, किसी भी वस्तु को भोगने की लालसा नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को सिखा रहे हैं और अभी भेज रहे हैं कि अब यही से जाओ, ऐसा नहीं कि अपने घर से हो करके और तब संधि के लिए जाओ, यही से जाओ। जातो शब्द पहले ही कहे थे, यहां से जाओ और संधि करो। इति देवान समादिश्य भगवान पुरुषोत्तम तेषां अंतर्दधे राजन स्वच्छंद गतिरीश्वर। जैसे आविर्भाव के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, ऐसे ठीक अंतर्धान के लिए भी कह रहे हैं। इस प्रकार देवताओं को आदेश देकर, सुझाव देकर के, परामर्श देकर के भगवान उनके बीच में ही अंतर्हित हो गए। जैसे उनके मध्य में आविर्भूत आविर्भूत हुए से ऐसे अंतर्दधे, अंतर्हित हो गए भगवान। स्वच्छंद गतिरीश्वर, भगवान की स्वतंत्रता गति है, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप, प्रकट होना, तिरोहित होना, सब अपने अधीन है, स्वतंत्र है। तो देवताओं के देखते देखते उनके बीच में वे छिप गए, अंतर्हित हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि वहां वे गरुण जी पर चढ़ करके उड़े और देवता लोग देख, कभी कभी भगवान ऐसे जाते हैं, गरुण जी पर उड़ते हैं, देवता लोग देखते हैं, आकाश में जाते जाते अंतरित हो जाते। लेकिन वहां पर समुद्र मंथन की भूमिका बोलते समय श्री भगवान वहीं अंतरित हो गए। भगवान को पुरुषोत्तम कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान पुरुषोत्तम, समस्त पुरुषों में उत्तम पुरुष, सबसे सुंदर, सबसे विद्वान, अविनाशी पुरुष, पुरुषोत्तम। और भगवान और ईश्वर वहीं पर अंतर्हित हो गए, ये सिखा करके। जब भगवान अंतर्हित हो गए तो जहां वे खड़े थे बात कर रहे थे, वो अंतर्हित होने पर सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी अंतर्हित हुए भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्च जगमतो स्वं स्वं धामो पेयुर्बलिं सुरा। जिस स्थान पर जिस ओर श्री भगवान अकस्मात अंतर्हित हो गए, उधर श्री ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान, जिस स्थान पर छिपे हैं। ये है धर्म और भक्ति, भगवान जहां छिप गए उस स्थान को प्रणाम करने। एक बार भगवान शिव निकले अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ घूमने के लिए, पार्वती जी ने कहा कहां जा रहे हैं, तो भगवान शिव ने कहा कि निकले हैं चलो घूम आवे। तो भगवान शिव जा रहे थे, तब तक एक स्थान पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे उस जमीन को प्रणाम करने लगे भगवान शिव। तो पार्वती जी पूछती हैं यहां किस लिए प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा यहां पर पहले एक भक्त भजन किए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए हैं, बहुत जप किए हैं, इसीलिए स्थान पूज्य है, तुम भी प्रणाम करो। तो भगवान शिव उस स्थान पर प्रणाम करने लगे और लौटने लगे कि यहां पर बहुत काल पहले एक भक्त भजन किए थे। फिर आगे गए तो दूसरे स्थान पर भी फिर प्रणाम करने लगे। तो पार्वती जी पूछी कि यहां क्यों प्रणाम कर रहे हैं, तो कहे कि कुछ वर्ष के बाद एक भक्त यहां पर जप करेंगे इस स्थान पर बैठ करके, इसीलिए स्थान तीर्थ है, अभी हुआ नहीं, आगे कोई भक्त वहां जप करेगा, तो इसलिए भगवान से प्रणाम करने लगे। तो कई जगह ऐसे प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे मतलब भगवान के संबंध से। तो श्री ब्रह्मा जी जो जगत गुरु हैं और एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो वे भगवान को प्रणाम किए, छिपे हुए भगवान को। अरे चाहे भगवान को मान लीजिए कोई आकार वाला माने, चाहे निराकार भी माने, तो प्रणाम तो करेगा ना, कि निराकार को प्रणाम भी नहीं करेगा तो प्रणाम तो करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी प्रणाम करें, भगवान जब प्रकट थे तब प्रणाम किए, और भगवान छिप गए तब भी प्रणाम कर रहे हैं, पर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। पितामह, वे पितामह हैं, सारे जगत को उन्होंने उत्पन्न किया है, तो वे पितामह प्रणाम किए, और फिर भवश्च और उनके साथ भव भी प्रणाम किए, भव मतलब शिव जी भगवान, वो भी प्रणाम किए, और प्रणाम करके ये दोनों स्वम स्वम धाम जगत अपने अपने धाम में चले गए। एक गए सत्यलोक जगमत और दूसरे गए कैलाश, अपने अपने घर गए। बाकी देवता लोग बलिम उपेयत, बलि महाराज के पास गए, इंद्र आदि देवता सब बलि महाराज के पास गए संधि करने के लिए। और ब्रह्मा जी कहे होंगे इंद्र से कि अब तुम देखो जाओ, हम लोग जा रहे हैं, अब तुम लोग संधि करो, भगवान ने कह ही दिया है, उपाय मिल ही गया, अब तुम्हारा दुख खत्म हुआ है समझ लो, जाओ बलि से मित्रता करो और समुद्र मंथन आदि करो। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उस समय ये लोग भी काय देह रूप से आए थे, ब्रह्मा जी भी ऊपर से देख रहे थे, शिव जी भी। पहले अपने घर चले गए और देवता लोग पहुंचे बलि महाराज के पास। बलि महाराज के पास देवता पहुंचे तो उस समय देवता कोई भी कवच नहीं बांधे थे। वास्तव में दैत्यों से जब भी भेंट हुई है देवताओं की तो युद्ध क्षेत्र में, लेकिन अब एक दूसरे के घर पर आ जाए ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। तो भगवान ने प्रथम बार जो शिक्षा दिया संधि करने की तब तो लोग बलि महाराज के घर पर गए, नहीं तो हमेशा भेंट हुआ था युद्ध स्थल में, लड़ने के लिए जुटे थे। तो जब इंद्र आदि देवता गए तो कवच नहीं बांधे थे और हाथ में कोई वज्र गदा धनुष ये सब नहीं लिए थे। तुम संधि करने जा रहे हैं तो राइफल लेकर थोड़े जाएंगे भाई, रख करके अंतरहित करके गए प्रेम करने के लिए। तो गए तो बलि महाराज के उस लोक में जहां वो दखल किए थे स्वर्ग आदि, तो जहां भी थे तो बहुत सी सेनाएं खड़ी थी और उनके सेनापति अपने अपने अस्त्रों के साथ खड़े थे। बलि महाराज बिल्कुल सुरक्षित थे, कई लाइन में सिक्योरिटी गार्ड सब खड़े थे और बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सेना नायक। जब ये लोग गए देवता लोग तो देखिए दैत्यों का स्वभाव, जितने सेना नायक थे बलि महाराज के वे सब खड़े होने लगे, अपना तैनात होने लगे। ये बेचारे आ रहे संधि करने के लिए और दैत्य सब युद्ध करने के लिए उत्सुक होने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दृष्ट्वा अरिनप्य संयतान जात क्षोभन स्वनायकान नषेधत दैतराट श्लोक के संधि विग्रह कालवित। ये सब तैयार हो गए देवताओं को मारने के लिए जबकि वे हाथ में कुछ नहीं लिए थे। श्री भगवान ने जब कहा कि तुम लोग जाओ और बलि से भेंट करो तो देवराज इंद्र ने कहा था कि अरे हम लोगों को जाते ही वो लोग मार डालेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। तो भगवान ने बलि के बारे में कहा था नहीं नहीं, बलि राजा है ना तो वो बध नहीं करेगा, तुम लोग निश्चिंत जाओ। वास्तव में बलि महाराज नहीं होते तो देवताओं को लोग वहीं मार दिए होते। दैत्य है, राक्षस है ना, वो लोग किसी अतिथि का स्वागत करना तो जानते नहीं। ठीक से गए देवता असंयत्ता, वे कवच नहीं बांधे थे और युद्ध आदि के लिए सावधान नहीं थे, पर फिर भी जात क्षोभन बलि महाराज के सेना नायकों में क्षोभ पैदा हुआ। क्षोभ का अर्थ है वे देवताओं के प्रति द्वेष से भरकर उन्हें मारना चाहते थे, तैयार हो गए। तब तक बलि महाराज ने रोका, आज्ञा दिया, निषेध दैत्यराज, दैत्यराज बलि ने रोका। क्यों रोका? बलि महाराज श्लोक के प्रशंसनीय हैं, वास्तव में जसस्वी हैं बलि महाराज, कोई ऐसा अनुचित काम नहीं कर सकते, उनका जस बहुत फैला हुआ है सारे जगत में। उन्होंने कहा नहीं नहीं, संधि विग्रह काल भी तो वे जानते थे कि किस समय किसी से प्रेम करना चाहिए और किस समय युद्ध करना चाहिए, उचित समय पर झगड़ा करना चाहिए जो झगड़ा करने का समय है। ये नहीं कि हमेशा बस युद्ध ही करे झगड़ा करे। तो बलि महाराज जानते थे कि किस समय संधि करनी चाहिए, किस समय कलह करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि ये समय नहीं है, ये हमारे घर पर आए हैं, हमारे अतिथि हैं, इनकी सेवा करनी है, इनका स्वागत करना है, कभी भी कोई भी इन्हें हथियार न दिखावे। तो सब लोग शांत हो गए। इसके बाद देवता लोग बलि महाराज के पास गए। ते वैरो चनी मासीनम गुप्तम च सुरजुत्थपहि श्रिया परमया जुष्टम जिता से समुपागमन। बलि महाराज आसीनम बहुत श्रेष्ठ सोने के सिंहासन पर बैठे थे, उनके चारों तरफ असुर जुत्थपहि असुर सेनापतिगण सब उनको घेरे हुए थे, अर्थात उनके द्वारा बलि महाराज सुरक्षित थे। तो देवता लोग पहुंचे और बलि महाराज कैसे हैं? परमया श्रिया जुष्टम जीता से समुपागमन, उन्होंने तीनों लोक को जीत लिया था। बलि महाराज तीनों लोकों में जितने भी देवता हैं और सब है सबको वश में कर लिए थे, इस कारण से परमया श्रिया जुष्टम परम वैभव से धन से जुष्ट थे, जुक्त थे, और बहुत बड़ा वैभव था और सबको अपने वश में कर लिए थे और बैठे थे सेनापतियों के बीच में। ते लोग पहुंचे वहां, गए बलि महाराज के पास। बलि महाराज ने इनका स्वागत किया, ये बोलना चाहिए वास्तव में स्वागतम, कहना चाहिए इंग्लिश में ऐसे जरूर बोलते वेलकम वेलकम मतलब सुआगतम, आगतम का अर्थ है आपका आना अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ आप आए, इसका मतलब ये होता है बहुत अच्छा हुआ आप हमारे यहां आए, आपका स्वागत है। बलि महाराज ने स्वागत किया देवताओं का। और इसके बाद इंद्र से उन्होंने कहा कि बताइए आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो भगवान ने सिखाया था इंद्र भगवान को, यहां से चालू करना एक एक बात, इसके बाद ये बोलना, इसके बाद ये बोलना, ये बोलना, फालतू मत बोलना। भगवान श्री विष्णु सिखाए थे बलि इंद्र को कैसे बोलना, क्या क्या बोलना, और किसी भी बात में मेरा उदाहरण देना कि भगवान ने कहा है कि संधि करो, हमको डांटा उन्होंने, तो इसलिए सरकार हम आपके पास आए हैं संधि के लिए। तो बलि महाराज सुन रहे थे सब कुछ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महेंद्र सुलक्षणया वाचा शांतित्वा महामति अभ्यभाषत तत्सर्वम शिक्षितम पुरुषोत्तमात्। जो कुछ है पुरुषोत्तम से श्री भगवान से सीखे थे इंद्र देवता, एक एक बात, समुद्र मंथन आदि करना है, ये करना है, ये करना है, जो कुछ भी भगवान पुरुषोत्तम ने बताया था उसको बड़ी मधुर भाषा में सांत्वना देकर के सब सुनाए। पहले सांत्वना दिए बलि महाराज को, दैत्यों की सभा लगी हुई थी, चारों तरफ खमखम भर गए थे कि देवता लगता है सदा के लिए अधीनता स्वीकार कर ली। बहुत खुशी छा गई कि देवराज इंद्र आदि जो दुश्मन माने जाते हैं हम लोगों के साथ युद्ध करते हुए, सब आकर के बलि महाराज के चरण में गिर गए। तो सब जुटे हुए थे तमाशा देखने के लिए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो बोलने वालों में इंद्र बहुत बड़े बोलने वाले हैं, अच्छा बोलते हैं, और उस पर भी भगवान के सिखाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा पहले बलि महाराज और अन्य समस्त हमारे ही वंश के लोग कश्यप जी के दयाद, तो हम भी कश्यप जी के पुत्र हैं और आप लोग भी कश्यप जी के ही संतान हैं, दनु से अदिति से उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने संबोधन किया इस तरह से, तो वास्तव में देखा जाए तो हम सब भाई हैं, एक ही पिता के संतान हम लोग हैं। तो हम लोगों में वैर होना ये अस्वाभाविक है, प्रीति होना ये स्वाभाविक है, पर दैव जोग से किसी कारण से हम लोगों में अनबन रहता है। क्या किसको दोष दिया जाए, न आपका दोष है न हमारा दोष है, यही भाग में लिखा था क्या। और हम लोग एक दूसरे से न बोली चली रखते हैं, न फोन फान भी नहीं करते हैं, जब देखो तब केवल झगड़ा ही रहता है, लेकिन ये बिल्कुल अस्वाभाविक। लोग जब एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के संतान हैं, तो हम लोगों में प्रेम होना स्वाभाविक। और ये बात हमारे समझ में नहीं आई तो स्वयं पुरुषोत्तम ने श्री विष्णु ने हमको ये सिखाया बताया कि तुम प्रेम करो। और सब बातें भीतरी कपट की नहीं बता रहे हैं, कि भगवान ने हमको डांटा कि तुम लोग क्यों वैर करते हो दैत्यों से और दानवों से, क्यों जाओ प्रेम करो। तो भगवान ने हमको प्रेम करने के लिए कहा, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा, इसलिए हम आए हैं। तो इस बात को सुनकर बलि महाराज को संतोना, अच्छा ठीक, अच्छा इसलिए आए, हमें भी आश्चर्य हो रहा था कि कैसे आ गए आप। हाँ तो सुनिए, भगवान ने हमको भेजा है और कहा है कि एक अमृत नामक द्रव होता है समुद्र में, क्षीर सागर में, लेकिन वो मथने से प्रकट होगा और उस द्रव को, उस पदार्थ को पीने से आदमी कभी मरेगा नहीं। परंतु भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करना है, मंदराचल को लाना है और वासुकी नाग को भी कुछ अमृत दे करके उनकी रस्सी बनानी है। इस विषय में भगवान ने कहा कि तुम लोगों से अकेले कुछ काम नहीं होगा, जाकर के दैत्यों से मेल करो, संधि करो, मिल करके भाई भाई हो ही तुम लोग ये अमृत पैदा करो और पियो। तो यही तो भगवान ने आदेश दिया है और हम उसी के लिए आपके पास आए हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो हम लोग समुद्र मंथन करें, और जब अमृत उत्पन्न होगा तो ईमानदारी से बांट करके पी लेंगे। बलि को ये बात बहुत अच्छी लगी, ये तो देवता उन्होंने सोचा, उनका ट्रिक देखिए। आखिर तो दैत्य हैं, भक्ति का अंश अलग है, उससे इसका मतलब नहीं है, अनुवंशिक झगड़ा है वंश का अपना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो बलि ने सोचा ये देवता तो पहले से ही कमजोर हैं, जब अमृत उत्पन्न होगा तो इनको मार करके हम लोग पी जाएंगे। तो उन्होंने उसके संधि पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर किया, ओके ठीक, तुरंत हस्ताक्षर हो गए। लेकिन शर्त भी कई रख, कई तरह। तो इंद्र भगवान ने कहा कि श्री भगवान ने विष्णु ने कहा है कि ऐसे पर्वत को उठाना है, बड़ी सावधानी से उसको उखाड़ना है, तोड़ ताड़ करके नहीं लाना है, पर्वत को उखाड़ करके लाना है और सब लोगों को लगना चाहिए तब आएगा। उसमें कुछ असुरों ने प्रस्ताव रखा है, ठीक है अमृत उत्पन्न होगा लेकिन पहले हम पियेंगे, हम पी लेंगे इसके बाद आप लोग पियेंगे बाद में। भगवान ने कहा था कि वो जो भी शर्त करे मान लेना। तो भगवान इंद्र कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, अमृत उत्पन्न होना चाहिए ना, आगे पीछे में क्या है, हम पीछे ही पी लेंगे, आगे पीछे से क्या बिगड़ता है। चलो बहुत खुश हुए। तो वहां जितने भी दैत्य थे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे संबरासुर आदि और कालके और पौलोम जिनको निवात कवच कहते हैं, वो सारे दैत्य जो बैठे थे बड़े बड़े, खास करके दनु के जो पुत्र थे, उन लोगों ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और सब खुश थे कि इन लोगों के बुद्धि में क्या आया, इनसे काम करवाएंगे, समुद्र मंथन करवाएंगे और अमृत सब छीन कर पी जाएंगे। तो सब लोगों ने ताली पीटा, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, संधि हो गई। और दोनों के मन में दोनों के प्रति घात की भावना है। ये लोग तो सीख करके आए ही, तो भगवान ने कहा था कि अमृत तुमको मिलेगा, और दैत्य सोच रहे हैं कि अच्छा वह घर बैठे लोग आए मेहनत कराएंगे और हम अमृत पी जाएंगे। लेकिन एक पक्ष भगवान के शरण में है, भगवान पर विश्वास है, और दूसरे को अपने बुद्धि और बल का भरोसा है कि हम लोग मार करके पी जाएंगे। संधि हो गई, बहुत सौहार्द चालू हुआ, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद तब दोनों परिवार में इस तरह सुलह हुआ, संधि हुई, बहुत खुशी हो रही थी कुछ लोग, और वो भी संधि करके क्या होंगे, अमर होंगे, अमृत पीने को मिलेगा, इस तरह से सोच रहे थे, अमर हो जाएंगे। तो ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृत सौहृदा उद्यमं परमं चक्रुर अमृतार्थे परम तप। महाराज परीक्षित को सुखदेव को स्वामी संबोधित करते हैं कि हे परम तप, हे लोभ क्रोध और काम को जीत लेने वाले महाराज परीक्षित, इस प्रकार दोनों कृत सौहृदय, आपस में सौहार्द हुआ, प्रेम हुआ, मिलन हुआ, भले ऊपर से हुआ लेकिन हुआ, सौहार्द हुआ, मिल गए। अब मिल करके दोनों परिवार काम करेगा, बहुत व्यापक परिवार था, इन्हीं दोनों में से किसी का शासन रहता है स्वर्ग में, कभी कभी दैत्य रहते हैं और कभी आदित्य रहते हैं, अदिति के पुत्र रहते हैं, दोनों मिल करके अब अमृत के लिए प्रयास किए। उद्यमम परमम चक्र, परम उद्यम किए, जितनी शक्ति हो सकती थी बुद्धि सब किए, तो परम उद्यम में सबसे पहला उद्यम करना था कि मथानी टांग करके लाना था, और वो बहुत दूर था, क्षीर समुद्र कहाँ है और ये मंदराचल कहाँ है, बहुत अंतर है। जम्बूद्वीप के वर्णन में, भागवत के पंचम स्कंध में भी लोकेशन है, ये कहाँ है वो कहाँ है, बहुत दूर है, और उतना दूर से टांग करके ले जाना था, ऐसा नहीं था कि पहले कोई रेल गाड़ी हो और उस पर लादा, इस समय भी क्या लादा जाएगा, एक भारी पत्थर को नहीं ढो पाएगा रेल, टांग करके लाना था। तो उद्यमम परमम चक्रु, अमृतार्थे परम तप, हे परम तप, हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, देव और असुर मिल करके आपस में सौहार्द की, और संविदम, संविदम का अर्थ समझा, समझा करना आपस में, बहुत काल के बाद मिले थे तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। किसी ने कहा कि पर्वत को लाना तो बड़ा कठिन है। अरे कठिन क्या है, कुछ कठिन नहीं। एक साधु थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी प्रयागराज में, वो कहते थे कि हमारी इच्छा के अनुसार अगर चार आदमी हमारे साथ मिल जाएं और मैं, तो हमें इतना साहस होता है कि हिमालय को उसके स्थान से हटा करके समुद्र में डाल दूंगा, इतना साहस होता है। तो बड़े बड़े वीर आपस में मिले हुए थे तो असंभव कुछ नहीं दिख रहा था। सबसे पहले मथानी लाना था। ततस्ते मंदर गिरीम ओजसोत्पाट्य दुर्मदः नदंत उदधिम निन्यो सक्ता परिघ बाहवः। उन्हें दैत्यों की और देवताओं की भुजाएं लोहे के मूसल की तरह थी, परिघ बाहवः, मोटी मोटी बाहें और बहुत मजबूत, और दुर्मद थे, अमृत पीने की लालसा से बिल्कुल उन्मत्त हो रहे थे दुर्मत। तो वे गए आपस में मिल करके और जयकार करते हुए, जय बोलते हुए, गरजते हुए पर्वत को उखाड़ लिए। मंदर गिरिम ओजसा उत्पाट्य, उत्पाट्य का अर्थ है जैसे ऊपर शिखर था पर्वत में, तो नीचे जमीन से भी उखाड़ लिए। आज का मनुष्य कभी कभी सोचे कैसे उखाड़ लिए, कैसे नहीं उखाड़ लेंगे। उनके भुजाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और उनके मानसिक उत्साह का, बल भी है, उत्साह भी है और एकता भी है। तो उखाड़ लिए मंदराचल पर्वत को, और नदंत खूब गरज करके जोर जोर से बोल रहे थे साबस या जय जयकार, और लेकर के चले। लेकर के चलने में किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अगर हाथ दुखने लगे तो एक जगह रख दीजिएगा, फिर सुस्ता करके तब चलेंगे। अब उस जोश में कोई किसी को कह नहीं रहा था। उखाड़ लिए, चले चले चले। अरे साधारण फूस का बना हुआ, पत्ता का बना हुआ झोपड़ी भी उठा करके नहीं चल पाते हैं, कभी देखा गया। पहाड़ उठा करके चलना है, और वो भी मंदराचल पर्वत, पर इतना जोश था, इतना उत्साह था कि उजसा उत्पाट्य, ओज में उखाड़ लिए। सब जोर लगाए होंगे, और एक एक असुर और देवता में तो अपार बल है, और समवेत बल जब लगा तो उखाड़ गए, टांग लिए एकदम हाथों हाथ टांग करके और चले। ऐसा भी नहीं था कि वहां टांग करके फिर रख देना था, अब टांग करके चलना था, बांह लगाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, चले जोश में। कुछ दूर चलने के बाद, वो बहुत दूर ले जाना था, तो बहुत दूर तक लाए भी, पर वे थक गए। सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं, दूर भारत वह श्रांता शक्र वैरोचना दय। तो दूर तक उस पर्वत को लेकर के चलना था, दूर तक उसका भरण करना था, मतलब उसी रूप में लेकर के चलना था। तो उसे पर्वत को उठाने से, उद्वह उस पर्वत को उठाने से और चलने से, चल भी रहे हैं, उठाए भी हैं, चलते चलते वजन लेकर के चल रहे हैं, बहुत भारी है, रास्ता भी बहुत लंबा है। तो जाते जाते यहां तक कि शक्र इंद्र और वैरोचनी इन बलि महाराज आदि थक गए। जब इंद्र थक गए, बलि थक गए, तो दूसरे लोगों की तो बात ही क्या, सब थक गए, चूर चूर हो गए, थक गए। लेकिन अब एक मिथ्या अपने प्रेस्टीज बचाने के लिए, कोई नहीं कह रहा था कि मैं थक गया हूं,
कोई नहीं कह रहा था कि मैं थक गया। अरे जब थक गए तो कहना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हम क्यों कहें? देखिए ये अज्ञान, हम क्यों कहें कि थक गए? और थक सब गए थे, जब बैरोचनी थक गए थे, विरोचन के पुत्र बलि जब थक गए थे और इंद्र थक गए थे, तो कौन नहीं थक गया? सब थक गए, बिल्कुल हाथ में दम नहीं रह गया, सांस लेने में दिक्कत पड़ने लगी। अकस्मात उन लोगों ने छोड़ दिया पर्वत को, छोड़ दिया वो पर्वत, गिरा और उसी से दब करके कितने लोग चूर्ण हो गए उसी पर्वत के अंदर, ये अमृत पीने जा रहे थे और उसमें से अधिक संख्या में वहां उमर गए, चूर्ण हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दूर भारत वह श्रांता शक्र वैरोचनादय अपार यंत्र स्तंभ ढूंढ विवसा बिजहू पथी। अब ढोने में वो लोग समर्थ नहीं रह सके, विवश होकर के हाथ पटवा गए, थक गया, वो लोग गिरा दिए, गिराए और वो भी खुद गिर गए। तो पर्वत ऊपर से कच्छ से आकर के लगा और चूर्ण कर दिया शरीर। आगे वे कहते हैं कि निपतन स गिरीश तत्र बहुन अमर दानवान, जितनी संख्या में देवता और दानव थे उसमें से 50% से ज्यादा, बहुन का ये अर्थ है कि इसने एकदम पीस दिया, समाप्त कर दिया, मर गए सब, पिछटा गए एकदम। निपतन स गिरीश तत्र बहुन अमर दानवान चूर्णया मास महता भारेण कनकाचल। वो पत्थर का पर्वत नहीं था, सोने का पर्वत था, तो सोना पत्थर से और ज्यादा भारी होता है, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अचलह कह रहे हैं। वो अचल, सचमुच अचल हो गया, इतना भारी पर्वत था और गिरा तो चूर्णया मास, एकदम चूर्ण बना दिया देवताओं को और दानवों को वहां पर। क्यों चूर्ण बना दिया? महता भारेण कनक अचल, कनकाचल स्वर्णाचल, स्वर्ण पर्वत चूर्ण कर दिया, हो गया समुद्र मंथन। जब मथानी ही टांग करके नहीं ला सके तो क्या ये मथेंगे, मर गए एकदम, सन्नाटा छा गया। जो बचे थे उनके भी किसी का कंधा टूटा, किसी की जांघ, किसी का हाथ, हाय 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 सब कर रहे थे। इस दशा में देवताओं और दैत्यों को देखकर श्री भगवान वहां प्रकट हो गए, वो तो सब कुछ जानते हैं, किसी को फोन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि हे भगवान हमारी ये दशा हो गई, क्या आपने सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया, और बेचारे मर गए। तांस तथा भग्न मनुष्य भग्न बाहुर कंधरा विज्ञाय भगवान तत्र बभू गरुण ध्वज। भगवान तो जान गए तुरंत, ये देख लिए कि इनका मनोबल समाप्त हो गया समुद्र मंथन करने के प्रति, भग्न मनस मन टूट गया, मन टूट गया मतलब मन में अब ये नहीं रहा कि अमृत पिएंगे या मंथन करेंगे, हो गया जैसे जी रहे हैं उतना ही केवल जी जाए। जिनके हाथ पैर टूटे थे उनकी बात कह रहे हैं उनका तो मन तो खत्म हुआ, उत्साह खत्म हुआ। और भग्न बाहुर कंधरान, उनकी बाहें और उनके उरु जांघ और कंधा सब टूट गया पर्वत के गिरने से तो इस तरह से टूट गया। तो विज्ञा, इस बात को जान करके भगवान स्वत्र बहु गरुण ध्वज, ध्वज वाहन को भी कहते हैं, भगवान वहां पर प्रकट हो गए और प्रकट हुए तो गरुण जी पर चढ़े चढ़े, गरुणारूढ़ भगवान प्रकट हो गए। गरुण जी भगवान को लेकर के चलते हैं तो गरुण वाहन श्री भगवान वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान ने क्या किया, पर्वत को हटाया, पर्वत को एक हाथ से हटाकर अलग किया और जितने देवता और दानव उसमें पीस गए थे उन पर भगवान ने अमृत दृष्टि से देखा। अरे उस अमृत में क्या है, भगवान के आंखों में जो अमृत है उसमें अद्भुत जीवनी शक्ति है। भगवान ने देखा केवल देवताओं को और असुरों को देखा, वे सब जी गए। इच्छया जीवयामास, इच्छा का अर्थ होता है दृष्टि, इच्छा माने चाह इच्छा, और इच्छा का अर्थ है दृष्टि। तो इच्छा जीवयामास, भगवान ने केवल देखा अमृत दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, स्नेह दृष्टि से, और जीवयामास निर्जला निर्व्रणन तथा सब बिल्कुल उत्साह के साथ हो गए और कहीं भी कटा छटा घाव नहीं रह गया। शरीर टूटा था, कटा था, कहीं व्रण नहीं रह गया, चिन्ह नहीं रहा, और मन में भी बहुत उत्साह भर गया। सबको भगवान ने जीवित कर दिया। क्या दुनिया में कोई ऐसा है कि किसी विभाग में मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए तो कोई मिनिस्टर आकर के केवल देखेगा सब ठीक हो जाएंगे, एम्बुलेंस मंगाओ, ये डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसा करो, ये फिर भी उसमें कुछ लोग तो मर ही जाते हैं और बाकी जो लोग बचते हैं तो उनका जो अंग भंग हो जाता है वो भी सीधा नहीं होता है, कहीं लकीर बनी हुई है देह पर, रेलगाड़ी चली है चीर करके, कहीं कुछ, कहीं पैर लंगड़ा हो गया, क्या हो, विकलांग हो जाते हैं। क्या करेगी सरकार, क्या पावर है। लेकिन ये सुप्रीम सरकार की बात सुनिए, प्रकट हुए और केवल देख दिए सब यथावत ठीक हो गए, शरीर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई घाव का चिन्ह नहीं, मन में कोई खिन्नता नहीं। ये नहीं खिन्नता थी कि अब गिर गए हैं अब नहीं मथेंगे, भगवान ने जब देखा तो मनोबल भी बढ़ गया और शरीर के घाव भी भर गए, सब ठीक हो गए। यह है भगवान की भगवत्ता। यदि कोई व्यक्ति सचमुच भगवत शास्त्र को मानता है और भगवान की अद्भुत शक्ति पर उसे विश्वास है तो इन्हीं सबका अध्ययन करना चाहिए। यही कारण है कि वैष्णव आचार्यों ने भगवान की स्थापना की है मंदिरों में। मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में भगवान जब आते हैं तो हजारों लोग, लाखों लोग भगवान को देखने जाते हैं और भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं मंदिर में आने वालों को, अपने स्नेह दृष्टि से देखते हैं तो वे निरोग रहते हैं, उनको धन का अभाव नहीं रहता है, वे सुखी रहते हैं। इसलिए मंदिर में जाना चाहिए भगवान को देखने के लिए। भगवान हमको देखते हैं। इसी प्रसंग में आएगा कि लक्ष्मी जी को अपनी छाती पर भगवान रखे हैं। जो कोई भगवान को देखने जाता है तो लक्ष्मी जी उसको देखती हैं, तो कृपा करती हैं, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है, उसे पैसे का अभाव नहीं हो सकता, लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। इसी के लिए वे भगवान की छाती पर रहती हैं कि कोई आएगा कृष्ण के पास तो वो देखेंगी, कृपा दृष्टि से देखती हैं। पर किस पर देखती है, जो उनके पति के पास, कृष्ण के पास आता है उसी पर देखती है, ये उनका स्वभाव है। इसीलिए मंदिर में भगवान का अर्चा विग्रह बैठाया जाता है। तो आपके इस जमुना नगर में एक बहुत भव्य मंदिर बनाने की योजना है अंतर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ द्वारा, तो मंदिर बना करके उसमें ठाकुर जी को बैठाइए और देखिए, रोज रोज जा करके आपका जीवन सुखी रहेगा। और ये प्रैक्टिकल बात है, देखा गया है कि भगवान का दर्शन करने वाले लोग कितना सुखी रहते हैं, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। यही हम लोग प्रकट सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत से कि मरे हुए दैत्यों को और देवताओं को भगवान ने अपनी दृष्टिपात से जीवित कर दिया। इस जगत में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो केवल देखते हैं या संकल्प करते हैं तो उनके संतान सुखी हो जाते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि मछली अपने अंडे को आंख से देख करके पोष देती है, केवल वो स्नेह से देखे अंडे पर तो बच्चे फलते हैं फूलते हैं, बाद में अंडा फूटता है और बच्चे तैरने लगते हैं पानी में। अगर वो रोज न देखे अपने अंडे को तो अंडे बढ़ते नहीं हैं, तो देखती रहती है स्नेह से। और इसी तरह से पक्षी अपने पंख से और अपने पैर से सहलाते रहते हैं अपने अंडे को, भीतर कुछ भी इंजेक्ट नहीं करते हैं, केवल स्नेह से छूते हैं, सहलाते हैं, पंख की छाया करते हैं, तो उसे अंडे बढ़ते हैं। जब एक जीव के इस सद्भावना का इतना बड़ा प्रभाव है, मछली की आंख से देखने का, और कछुआ की मां कहीं भी रहती है, यदि अपने अंडे को, अंडे का ही चिंतन करती है, दूर रहती लेकिन अंडे का चिंतन करती है, और अंडा का चिंतन करने से वो अंडे बढ़ते रहते हैं, सुखी रहते हैं। ये देखा गया प्रैक्टिकल करके कि कछुए की मां को यदि दुख में डाल दिया गया है या कभी मार दी गई है तो अंडे बढ़ते नहीं है, उन्हें बच्चा पैदा नहीं होते। तो मानसिक चिंतन से वो अपने अंडे को पोष देती है, मछली अपने आंख से, दृष्टि से अपने अंडे को पोषती है, और पक्षी अपने पंख के स्नेह में, छाया से और अपने पंजे से सहला करके पुष्ट करते हैं। तो फिर श्री भगवान अगर डायरेक्ट आंख से देख करके किसी को पोषे तो इसमें आश्चर्य क्या है? कौन सा आश्चर्य? भगवान की ही शक्ति तो इन जीवों में भी आई हुई है, वो भी नाम मात्र की। भगवान अगर शक्ति सुधा सिंधु हैं तो ये बिंदु के बराबर सारी शक्तियां जीवों में पड़ी हुई। तो स्नेहपूर्ण चितवन का प्रभाव जड़ जीवों में भी देखा जाता है। तो भगवान तो चिन्मय है, दिव्य है और स्नेह के समुद्र है। उन्होंने देखा अपने ही जीवों को, दैत्यों को या देवताओं को, ये भगवान के आदेश से काम करने गए लेकिन बीच में पर्वत गिर गया, ये मर गए, तो भगवान स्नेह से उन्हें देखे और जीवित कर दिए। श्री भगवान में स्वाभाविक सहज शक्ति है, कहीं से शक्ति लाना नहीं पड़ता है उन्हें, स्वाभाविक शक्ति है। तो इस प्रकार उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को जीवित कर दिया। गिरिपात विनिष्पिष्टान विलोक्या मर्दानवान इच्छया जीवयामास निर्जरान निर्व्रणान जथा। विनिष्पिष्टान, पर्वत के गिरने से बिल्कुल पीस दिए गए थे। एक तरह तो चूर्णयामास सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं विनिष्पिष्टान, पिसा गए थे, मर गए थे, शरीर बिल्कुल चूर्ण चूर्ण हो गया था, लेकिन फिर भी भगवान के दृष्टिपात से वे सब जी गए। निर्जरान में जरा नहीं रह गई, जरा का अर्थ बुढ़ापा, और यहां जरा का अर्थ थकावट, चिंता, ग्लानी, मानसिक दुख, ये नहीं रहा। और निर्व्रण, व्रण कहते हैं घाव को, शरीर में कहीं कट जाए या फोड़ा हो जाए, इसको व्रण कहा जाता। तो शरीर में देवताओं के और दानवों के कहीं भी व्रण नहीं रह गया कटने छटने का, और कोई थकावट नहीं, क्लांति नहीं, बिल्कुल फ्रेश हो गए। इस तरह भगवान ने कृपा करके जीवित किया। अब क्या करते हैं भगवान? इसके बाद भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने कई न ली लिया, एके न ली लिया। फिर उस पर्वत को भगवान ने एके न हस्ते न ली लिया, लिया खेल खेल में भगवान अपने एक हाथ से उस पर्वत को उठाए और गरुण जी पर रख दिए, और इसके बाद गरुण जी पर वे भी चढ़े, और गरुण जी को उन्होंने इशारा किया, उन्होंने अपने पंख को नीचे किया, और सारे देवता और दानव भी गरुण जी पर चढ़े भगवान के साथ। वो पर्वत भी रखा गया, भगवान ने एक बाह से रखा, ऐसा नहीं कि बहुत जोर लगा करके वे कहें कि आप लोग मिल करके लाद दो गरुण जी पर, ऐसा नहीं, एक हाथ से उठाए और पर्वत को रख दिए और स्वयं चढ़े, और सारे दैत्यों को और देवताओं को भी चढ़ाए, और गरुण जी को उन्होंने कहा ठीक है गंतव्य डेस्टिनेशन पर पहुंचाओ, मतलब क्षीर समुद्र के तट पर लेकर के चली, और गरुण जी उड़े पर्वत को लेकर और श्री भगवान को और दानों और दैत्यों को लेकर चले और क्षीर समुद्र के तट पर आकर लैंडिंग किए उड़ करके आए। देखिए भगवान की शक्ति, गरुण जी भगवान की ही शक्ति से शक्तिमान है, इतने पर्वत को लेकर के उड़ रहे, उड़ करके चले भगवान में। देखिए अब तक यहां तक कोई भेद नहीं है, जितना देवताओं को मानते हैं उतना ही आदर उन्होंने दैत्यों को दिया, ये नहीं कि उनको कह दे तुम लोग पैदल आओ और देवता चलेंगे गरुण जी पर, भगवान में ये विषम बुद्धि नहीं, ठीक है चलो। उन लोगों में अब कोई थकावट नहीं थी, लेकिन फिर भी ये गिरा था पर्वत, उसको देख करके सब चकित थे। इसलिए भगवान ने सोचा कि इन लोगों को अब चढ़ा करके ही ले चलें। सूर्य इनको पैदल छूछे हाथ बिना कोई भार लिए हुए भी चलाने का हिम्मत भगवान को नहीं हुआ। उन्होंने सोचा नहीं नहीं, यह है प्यार। जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, वैसे भगवान अपने जीवों से प्रेम करते हैं। तो दोनों को चढ़ाए और गरुड़ जी लेकर के चले उस पर्वत को। तो वहां पर जाकर के अपने स्कंद पर जो पर्वत को रखे थे, तो गरुड़ जी उसको उतारे और उतार करके चोंच से खींच करके जल के निकट किए। उतारे थोड़ा दूर समुद्र से और उसके बाद खींच करके समुद्र के निकट कर दिए, क्योंकि भीतर अब समुद्र के अंदर डालना पड़ेगा उसको मंथन करने के लिए। तो मंथानी तो आ गई, अब रह गया रस्सी। तो भगवान ने संकेत किया, यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अवरोप्य गिरिम स्कंधात सुपर्ण पत्तांबर। पक्षीराज गरुड़ जी गिरी को अपने स्कंध से अवरोप्य नीचे उतारे और जयो जलांत उत्सृज्य, और जल के निकट करके और चले गए हरिणा स्व विसर्जित। क्योंकि भगवान हरि ने प्रस्थापित किया गरुड़ जी को, कहा कि ठीक है तो आप जाइए, अब आप यहां से जाइए, क्योंकि आप रहेंगे तो वासुकी आ नहीं पाएंगे। गरुड़ जी सर्पों के बैरी हैं, वो भी मातृ संबंध है, कद्रू के लड़के सब सांप हैं और बिनता जी के पुत्र गरुड़ जी हैं। तो कद्रू और बिनता में बहुत झगड़ा होता था, वासुकी जी आ ही नहीं सकते थे। अगर सुन जाएंगे गरुड़ वहां है तो अरे बाप रे, वो आ नहीं सकते थे। इसलिए भगवान ने कहा कि गरुड़ जी अब आप जाइए और आने दीजिए वासुकी जी को। तो गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। तो अब देखिए, देवता लोग नागराज से आमंत्रण करेंगे कि हम लोग आपको भी अमृत देंगे और पिएंगे तो आपका शरीर और बलवान हो जाएगा, थोड़ा दुख सह लीजिए, हम लोग आपको रस्सी बनाकर खींचेंगे पर्वत में। तो तैयार हो गए, तो मंथानी भी आ गई और बासुकी जी भी आ गए। अब समुद्र मंथन कल से चालू किया जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।